आज भी हम लोगों ने ये सोचा कि जब सुबह को उठे तो करें क्या। सबसे पहले तो आदमी सोचता है जाके दांत मांज लें, हाथ मुंह धो लें, या सबसे पहले जाके एक सेब खा लें। लेकिन शायद सबसे आखिर में हम लोगों को याद आता है कि हम लोगों को फिर से खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक और ज़िंदगी बख्शी और सुबह को हम लोग उठ गए। अगर न उठते तो यकीनन हम लोगों के गुज़श्ता आमाल हम लोगों के काम आते, लेकिन फिर एक और मौका जो है हम लोगों के हाथ से निकल जाता। तो खुदा ने एक और मौका फराहम किया है, खुदा का शुक्र अदा करें कि ये मौका हम लोगों को मिला ताकि खिदमत खल्क कर सकें। प्रोग्राम सो को ज़िंदगी में खुश आमदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। और ये प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी हर रोज़ आपको मालूम है कि सुबह को ही नशर किया जाता है, तो ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। नाश्ता कर रहे हों, स्कूल जाने से पहले, ऑफिस से निकलने से पहले जो है अगर बैठ के थोड़ी देर देख लेंगे, यकीनन आपके भी मालूमात में इजाफा होगा और हम लोगों को खुशी हासिल होगी कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। और इसमें कई चीज़ें हमने जो आपके लिए तैयार की हैं वो बहुत अहम है। आज जो है एक तो मैं ये बताता चलूँ कि ख़िज़ां के महीने का ख़िज़ां के मौसम का पहला दिन है, यानी ईरान में कम से कम, यानी आज जो है आम तौर से वैसे वो जो लीप ईयर होता है उसकी वजह से 23 सितंबर है, लेकिन आम हालात में 21 सितंबर को यहाँ पर स्कूल खुलते हैं। पहली मेहर जो महीना है पहला ख़िज़ां का, तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं स्कूल में और हफ्ते दिफाए मुकद्दस भी चल रहा है। कल आपने एक रिपोर्ट भी इस सिलसिले की वैसे देखी होगी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी आपने देखे होंगे, तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे लगारी साहब का एक ज़बरदस्त पैगाम। उन्होंने हमारे मकसद के बारे में, यानी हफ्ते का जो मौजू है उसके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लिखी। उन्होंने लिखा है कि ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए पुख्ता इरादे का होना ज़रूरी है, और इरादा मजबूत हो तो मंजिल मिल ही जाती है। वाकई यानी बिल्कुल आपने सही बात कही है, यानी वाकई अगर इरादा आप मजबूत अपना रख लें तो क्या कुछ आपको हासिल नहीं हो सकता। अभी आपने ये जो तस्वीरें इससे पहले देखी तो उसमें आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि हर एक जो है सुबह को निकलता है अपनी रिज्क को तलाश करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए कहाँ पर है। उसमें यानी बहुत ज़्यादा ताकीद भी है हमारे अइमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे तमाम अहादीस और मजहबी कुतुब में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो कोई हलाल रोज़ी के लिए सुबह को निकलता है घर से, जहाद यानी उसका और जहाद का सवाब जो है वो बराबर है, और उसकी मंजिल और मकाम भी वही जहाद की है। तो इसमें जो है एक बहुत ही अहम नुक्ता ये है कि एक मकसद के लिए आप घर से निकलें। ये ना हो कि आप अगर काम पे भी जा रहे हैं तो ये हो कि भाई हम जा रहे हैं काम पे काहे के लिए जा रहे हैं, पैसा हासिल करने। पैसा तो एक साइड की चीज़ हो गई और एक आपको हासिल होनी होनी है, काम तो आपने किया है आपको पैसे मिलने हैं, खुदा ने कहा है कि रिस्क देगा, तो इसकी कोई परेशानी नहीं है। मेन यानी मसला ये है, असली मसला ये है कि आप एक मकसद के लिए काम करें, चाहे वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए रोज़ी फराहम करना हो। कि आदमी घर से सोच के जाता है कि हाँ आज हमारे बेटे को फलां चीज़ चाहिए थी तो उसके लिए आज ख़रीदनी है, तो इतने पैसे तो हैं नहीं, चलो आज काम करके फलां चीज़ ख़रीद लेते हैं। छोटा सा मकसद है लेकिन बहुत ज़्यादा अहम है। थोड़ी देर में वैसे खुर्रम भाई आने वाले हैं, अभी कुछ मसला पेश आ गया उनके साथ, तो थोड़ी देर में वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तब तक हम लोग अगर हमारे साथी हमें बता दें, वैसे चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। आज के मौजू के बारे में वैसे हम लोगों ने कल आपको बता दिया था और बहुत ही अहम मौजू भी है, और कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं कह सकते कि सस्ता इंतखाब है इलाज के लिए, लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर में आएंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या मुनासिब और सस्ता इलाज है कि नहीं, हर एक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह इस हवाले से हम लोगों का सवाल रहेगा। मौजू ये है कि पानी के ज़रिए कैसे मुख्तलिफ चीज़ों का इलाज किया जा सकता है। तो पानी के ज़रिए नहीं, हाइड्रो जो कह सकते हैं कि थेरेपी होती है उसके ज़रिए कैसे इलाज किया जा सकता है, बहुत अहम चीज़ है, खुसूसन जो लोग दवाओं से भागते हैं उन लोगों के लिए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। कई चीज़ें जो हमने आपके लिए हमने तैयार की हैं उसके बारे में हम हल्का सा हम बता दें। एक तो एक कमरे के बारे में हम बताना चाह रहे हैं जो कह सकते हैं मुख्तलिफ तालिबे इल्म जो होते हैं उनके लिए बनाएं। बहुत ही अहम कमरा है, तो ज़रूर हम लोगों का देखिएगा प्रोग्राम। इसके अलावा एक दो नुक्ते हैं कुछ लोगों के बारे में जो बहुत ही गुस्से में रहते हैं हमेशा, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि खुदा न खासा मोटापे का शिकार ना हो जाए और मसाइल का शिकार ना हो जाए, उसके हवाले से इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे। एक दो और चीज़ें भी हैं इंशाल्लाह, अगर वो वक्त मिला तो आपसे हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, एक प्रोग्राम आप देखिए तकरीबन 7-8 मिनट का है, वो आप देखिए, उसके बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और प्रोग्राम जारी रखेंगे। खुर्रम भाई भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे उस वक्त तक।
अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको कह और उकाई से मुतालिक चंद बातें बताना चाहता हूँ। कह और उबकाई, जिसको नाजिया और ओमिटिंग कहा जाता है, ये दरअसल हमारे मेदे के का एक रिफ्लेक्स मेकनिज़्म है। यानी जब भी कोई अजियत या अजियत पहुंचाने वाली शय मेदे के अंदर पहुंचती है तो मेदा उसको ख़ारिज करने की कोशिश करता है, जिसका तरीक़ा उल्टी या दस्त है, जिससे ये उन अजियत पहुंचाने वाली चीज़ को ख़ारिज करता है। अगर ये अजियत पहुंचाने वाली चीज़ हल्की है तो उससे उबकाई आती है, जिसमें कोई चीज़ खारिज नहीं होती बल्कि एक मोमेंट होता है, एक हरकत होती है मेदे की। जबकि कय में मेदे के अंदर मौजूद जो ग़िज़ा होती है वो खारिज होती है मुँह के रास्ते। इसके असबाब बहुत सारे हैं, जिसमें से चंद हम आपको यहाँ बता देते हैं कि ठंडी और मरतूब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, मेदे में बलगम का जमा होना, मेदे के अंदर सोजिश या सफरावी मादे का इकट्ठा होना, मेदे के अंदर बलगम की ज़्यादती होना, या इसी तरह से मेदे के अंदर कीड़ों का मौजूद होना, कोई ऐसी शय देखना जो बहुत ही करीह हो, जिसको देखने से उल्टी हो जाती है, कोई बदबूदार चीज़ को सूंघना, ये भी एक सबब होता है कह का। इसी तरह से मेदे के अलावा कुछ और असबाब हैं, जैसे जिस्म के अंदर आज़ा, डिफरेंट मुख्तलिफ आज़ा के अंदर वरम का पैदा होना भी एक सबब होता है इसका। चाहे सबब चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा होता है जिससे अजियत पहुंचाने वाली या मेदे के अंदर मौजूद चीज़ को खारिज करना होता है। अलामात सबकी थोड़ा बहुत अलग अलग हैं। सफरावी कय या दस्त जो है सफरावी मादे की वजह से अगर हो रहा है तो उसमें मुंह का मज़ा कड़वा, और कय में सफरावी मादा खारिज होता है। इसी तरह से ग़िज़ा के फासिद होने की वजह से कय होगी तो उससे फासिद ग़िज़ा का इखराज होता है, और बलगम की ज़्यादती की वजह से अगर कय होती है तो उसमें बलगमी मादा ग़िज़ा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खारिज होता है, और खट्टी डकारें आती हैं। दीगर अमराज में अगर कह होती है तो उसमें हमें दूसरे अमराज की तशखीस पहले से होती है, जैसे पेरिटोनाइटिस या सल्पिंजाइटिस, न्यूमोनाइटिस या मैनिंजाइटिस, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मेदे से हटके हैं लेकिन इसमें भी कह और उपकाइयाँ आती हैं। इलाज में एहतियातन सबसे पहली चीज़ की डायग्नोसिस या तशखीस की तरफ तवज्जो देने चाहिए, तशखीस के बाद ही इलाज शुरू करना चाहिए, वरना इसमें कामयाबी नहीं मिलती। बेहतर तरीक़ा है पेशेंट को, मरीज़ को कहीं इलाहदा किसी कमरे में सुकून की जगह पे ले जाया जाए, असबाब को दफ़ा किया जाए। अगर पेशेंट ने या मरीज़ ने फासिद ग़िज़ा का इस्तेमाल किया है तो कह को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि ऐसी अदविया इस्तेमाल करें जिससे पेशेंट को और ज़्यादा कह हो और वो फासिद मादा जिस्म से या बदन से खारिज हो जाए, मैदे से कह के रास्ते खारिज हो जाए। इसी तरह से सफरावी मादे की वजह से अगर कह हो रही है तो उस सूरत में ऐसी अदविया इस्तेमाल करें जो काते सफरा हो, सफरा को खारिज करें। लेकिन वसूल यही होता है कि जिस मादे की ज़्यादती की वजह से दस्त कह हो रही है उसका इखराज ज़रूरी है, उसके बाद कह को रोकने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं। तो सफरावी कह की सूरत में आलू बुखारा 5 अदद, सिकंजबीन लोमूनी 4 तोला इसमें मिला करके इस्तेमाल कराता है, इससे सफरा का इखराज होता है और ऐसे सूरत में ग़िज़ा बिल्कुल बंद कर दी जाती है। जब कह होना बंद हो जाए तो हल्की और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ लिक्विड की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कह की वजह से डिहाइड्रेशन होता है तो उस सूरत में डिहाइड्रेशन का इलाज पानी के ज़रिए, और पानी शरबत में एक गिलास शरबत में एक चुटकी नमक मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको पानी में घोल करके पिला सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल करें जिससे उल्टी रुक सके। सिकंजबीन लिमोनी बहुत ही उम्दा दवा है इसके लिए, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे अमराज की सूरत में, यानी वो अमराज जो मेदे से हटके हैं, उनमें अगर उल्टियां होती हैं तो उसका इलाज ये है कि उस मर्ज़ का इलाज किया जाए, न कि उल्टी रोकने की दवा से उसका इलाज किया जाए। उस मर्ज़ के लिए जो मुनासिब दवाएं हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, और बेहतर है कि किसी हाज़िक तबीब या अच्छे डॉक्टर से मशवरा लेने के बाद ही दूसरी दवाएं इस्तेमाल की जाएं। और अगर उल्टी और दस्त के सूरत में चक्कर आ रहे हों, तेज़ बुखार हो, तो लाजमी है कि उस पेशेंट को किसी अस्पताल में एडमिट कराया जाए और उसकी तशखीस के लिए जो जांच ज़रूरी है वो कराई जाए और उसके बाद उसका मुनासिब इलाज किया जाए। खुदा हाफिज़।
मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, अपने कई लोगों ने भेजी हैं, आगाली साहब ने, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे अगले प्रोग्रामों में भी ज़रूर दिखाएं इसको। वैसे एक थोड़ी देर पहले उन्होंने एक तस्वीर भेजी है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। बहरा खुर्रम भाई आ गए, आप सो रहे थे?
जी बिल्कुल, गाड़ी में सोया हुआ था मैं।
अच्छा, नहीं तो वहीं गाड़ी में सोते रह गए?
जी बिल्कुल, ट्रैफिक थी तो मैंने गाड़ी पार्क की साथ, और मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो लेते हैं ताकि ट्रैफिक निकल जाए। सलाम अर्ज करता हूँ अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में, और माजरत चाहता हूँ देर आने से, और यह है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक। और
इसमें एक चीज़ है कि बस हम और खुर्रम जो है वो आप देख लीजिए, हम लोग कपड़े जो हम लोग इसके बाद स्कूल जाने वाले
हैं, बिल्कुल
यूनिफॉर्म पहन लिया है हम दोनों ने।
लेकिन सिर्फ ये है कि मैं सीनियर स्कूल में पढ़ता हूँ, ये जूनियर स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, इसलिए जो है ये नीला
थोड़ा ज्यादा अच्छा नीला पीला ज्यादा रंग है मेरा।
जी तो हमारे पास वक्त हो गया डॉक्टर साहब के पास जाने का, ये नहीं?
हाँ बिल्कुल, अभी वक्त है, अपने बहुत ही काफी दिन के बाद तशरीफ लाए हैं।
सही बिल्कुल, ये तो है, लेकिन बहरहाल जाने पहचाने हमारे मेहमान हैं, और डॉक्टर साहब को बताता चलूं, डॉक्टर यूनुस अहद भट्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर साहब, और
और जो हमारी बात डॉक्टर साहब से चलेगी आज वो ये होगी कि पानी से इलाज करना। अब ये पानी से इलाज करने का क्या मतलब बनता है ये तो डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे। सलाम अर्ज करता हूँ।
सलाम मैं पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपने फिर मुझे इस मौके का।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम को। डॉक्टर साहब पानी से ट्रीटमेंट, हाइड्रो ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं?
ये हाइड्रोथेरेपी जो है ये पहले से ही थे, ये ऐसा नहीं है कि ये बीच में स्टार्ट
कोई नई चीज़ है
जी। अगर हम मिसाल ले लें तो इब्न सीना जो थे, जो फादर ऑफ मेडिसिन जिसको बोलते हैं,
ठीक है,
तो उन्होंने भी स्टार्ट की थी। और जो बाकी जो हैं यूनानी का जो ये है बादशाह थे, उन्होंने भी स्टार्ट, या रोमन एम्पायर से, यानी कहावत है कि रोमन एम्पायर जब कोई हमला उनको करना था तो जो उनके जनरल्स थे वो पहले नहाते थे, एक ख़ास किस्म का पानी होता अच्छा। करता था, तो पहले नहाते थे, उससे उनको ये यकीन होता था कि हम एक तो ज़िंदा रहेंगे और तंदुरुस्त और बहुत देर तक हम जंग कर सकते
जबरदस्त।
तो ये उसका ये है। तो अब हाइड्रोथेरेपी अगर हम देखें पानी, तो ये बहुत सारी जो डिजीज़ है हमारी, जो मराज हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही मुफीद है,
ठीक है।
तो अब पानी का कैसा होना है ये मुहिम है
सही।
ये तो पानी ठंडा होना चाहिए, पानी गर्म होना चाहिए, या जिसको हम वेल आर्म बोलते हैं, या न गर्म होना चाहिए न सर्द होना,
ठीक है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास। देखें अगर हम गांव में जाएं, वो नेचुरल स्प्रिंग्स जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है, चश्मे जो हैं,
चश्मे जो है
कुदरती
जी। या दूसरे अगर हम मॉडर्न लाइफ में जाएं तो स्विमिंग पूल्स हैं,
ठीक है,
जकोजीज हैं,
ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब जिंदगी जो अर्बनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि शहरी जिंदगी अब ज्यादा हो गई, यानी लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि ये क्या करें, तो अब ये आ गई है जो अर्बन में, तो स्विमिंग पूल सबसे पहला वही आता है।
डॉक्टर साहब यहाँ पर पहले हमें ये तो बताएं कि जो आपने, ठीक है, आपने ये तरीके बता दिए, लेकिन कब इसका इस्तेमाल किया जाए? नॉर्मल हर रोज जो है हम लोग नहाएं, हम लोग हर रोज स्विमिंग पूल जाएं, या किसी खास बीमारी के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं?
देखिए अगर हम पहले एक मिसाल हम लें, सभी बीमारियों का जो मंबा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है
जी?
वो स्ट्रेस है।
अच्छा।
और स्ट्रेस में अगर कोई आदमी 20 मिनट तक पानी में रहेगा तो उसका स्ट्रेस बहुत ही कम होगा।
इसका मतलब ये सही कहते थे कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप जाएं गर्म पानी से नहा लें, तो
नहा लें जी, बहुत अच्छा। जी जी ये एक तो ये है,
ठीक है।
दूसरी बीमारियां हैं, ऑर्थोपेडिक बीमारियां जो है
हड्डियों शड्डियों की।
अब देखिए एक सबसे बड़ी बीमारी है आर्थ्रोसिस को हम बोलते हैं, DJD, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जॉइंट्सों पे, देखिए जब हम पानी में यानी एक बॉडी जाती है, तो वो हमारा पहला प्रिंसिपल था वो आर्चमेड्स प्रिंसिपल,
ठीक है।
जब हम कोई बॉडी पानी में जाता तो उसका वेट हाफ होता है,
सही है।
तो अब जब हमने किसी को आर्थराइट्स है, रूमेटॉइड आर्थराइट्स है, ब्लड प्रेशर में भी ये काम बहुत ही, ये इसका रोल बहुत ही अंदर है,
सही है।
और बाकी जो है पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज जो है, रिस्ट की है, एल्बो की है, नी की है, या एंकल की है,
सही है।
कहीं के भी है, तो ये ऑपरेशन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों, यानी यहाँ पे मसला ये क्यों है? देखें जब हम यहाँ पे सपोज ऑपरेशन के बाद जब कोई पेशेंट बेड पे है, तो वो उसका जख्म जब ठीक होता है, तो वो हरकतें अंजाम नहीं दे सकता, वो हरकत नहीं कर सकता,
ठीक है।
क्योंकि जब अगर वो हरकत अपनी अंजाम देगा तो दर्द होता है,
ठीक है।
अगर वो पानी में जाए तो वजन बॉडी का कम होता है, तो वो इजीली वो हरकतें जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं,
सही।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो जो मुहिम सबसे है, जो अहम सबसे है, DJD, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, सबसे ज्यादा जो मसला है वो हमारे घुटनों पे,
सही।
देखिए सबसे बड़ी बीमारी हमारी जो है वो मोटापन है,
ठीक है।
अगर कोई मोटा, वो कोई भी हरकत नहीं कर सकता,
कोई भी नहीं कर सकता,
कोई जॉइंट ही ला नहीं सकता, क्योंकि वजन ज्यादा है,
वजन ज्यादा है।
तो उसके लिए बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है कि वो यहाँ पे स्विमिंग पूल में जाए,
जबरदस्त।
तो वहां पे जब वो जाए तो वहां पे एक किस्म का फ्रीडम ऑफ मोशन उनको मिलती है,
क्योंकि
वजन कम होती है, जो जाज्बे है, जो जो ग्रेविटी है वो कम होती है, तो वो अजीब। तो अब वहां पे स्विमिंग पूल में जाना कैसे होता है,
ठीक है,
पहले ये नहीं है, पहले जो देखें स्विमिंग पूल अगर आप देखें तो उसमें डेप्थ भी है, वो मीडियम भी है और शेलो भी
ठीक है,
तो उसको क्या क्या चाहिए, पहले जहां से वो अमीक है, जहां पे वो उसकी डेप्थ है, गहरा है,
जी जी।
वहां से जाने ना कि पहले वहां, जब अच्छा। वो गहरा में अपनी हरकतें अंजाम देगा तो स्लोली वो आगे आगे आके
ठीक है,
तो फिर वो शेलो एरिया पे आएगा जहां पे कम गहरा है, तो वहां से वो जो जो वेट बेयरिंग जिसको हम बोलते हैं कि वजन अपना पांव का पूरा वो अपने पांव पे रख सकता है और इजीली वो हरकतें हम दे सकते हैं।
अच्छा जी ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये क्या आपने कहा डीप, जब गहरा पानी वहां से है, अब कुछ लोग को स्विमिंग नहीं आती
जी जी,
तो उनके लिए फिर क्या करें हम लोग?
अब उनके लिए क्या है, देखिए अगर स्विमिंग पूल में ऐसा है कि वहां पे एक एक पैरेलल बार्स भी रखे हुए
जो
तो उनको हाथ में रखे तो फ्लोट करे अपने आप को
ठीक ठीक सही
हाथों में। अब यहाँ पे देखें अगर किसी में एक बहुत सी ये डिजीज है जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, जम होता
जमा हुआ कंधा,
कुछ भी हरकत
नहीं सकते ठीक है,
तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्थोपेड्स क्या करते हैं कि उनको सर्जरी रूम में लेते हैं, ऑपरेशन रूम में लेते हैं, तो एक खास किस्म का इंजेक्शन डालते हैं, बेहोश करते हैं, यहाँ पे उसको एनेस्थीसिया देते हैं, तो फिर वो एक्शन करते हैं,
हिला सकते हैं
कि उड़, लेकिन पानी में ये हम इजीली कर सकते हैं
बगैर
इंजेक्शन के, वो क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ मोशन है ज्यादा है,
सही है ठीक है,
यानी आपके जो ये जॉइंट्स है इनकी जो मोशन है बहुत ही आजाद है,
यानी
फ्री है, ये वो काम कर सकते हैं
ठीक है,
ये पहला। तो दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर
ठीक है,
देखें ब्लड प्रेशर का ये है कि जब गर्म पानी में हम डालें तो ब्लड प्रेशर जिनका लो होगा तो वो स्लोली यानी एक खास किस्म का ये मैकेनिज्म है जो ब्लड प्रेशर को कांस्टेंट ले
कर देता है ठीक है,
तो ये एक है। तो दूसरा हार्मोनल जो एक्टिविटीज है, हार्मोन जो हमारे बदन
अच्छा
के है।
डॉक्टर साहब जिनको ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है यानी उनको आप तो से करते हैं वो गर्म पानी से
वेलार्म
गर्म ठीक है सही जी
जी। अब यहाँ पे भी एक मसला दूसरा है कि अब गर्म पानी किन किन के लिए ठीक है
ठीक
और सरद पानी किन बीमारियों के लिए ठीक
है, इस पे बात करेंगे डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक वक्फा लेना है, बड़ी मुफीद गुफ्तगू चल रही है नाज़रीन, आप लोग सुन रहे हैं डॉक्टर यूनुस आहद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पानी से कैसे इलाज किया जा सकता है, जाहिर बात है जो फिजियोथेरेपी की बीमारी है उसी की बात ज्यादातर हम करेंगे, लेकिन अभी चलेंगे हसन के पास, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है।
इसमें एक तो मुख्तलिफ मैं मैसेजेस इस वक्त पढ़ रहा था, प्रोग्राम से मरबूत तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन फैसल मुर्तजा साहब ने कई बहुत ही अहम चीज़ें मकसद के बारे में बताई, इंशाल्लाह वो प्रोग्राम में आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं। फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सब जिंदगी में, और गुफ्तगू हो रही है पानी से इलाज के मुख्तलिफ तरीके जो हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीका है स्विमिंग पूल घर के करीब होगा ही, बहरहाल बाद लोग हैं उनके घर में ही होगा, बाद लोगों के घर के बाहर होगा, तो बहरहाल ये सब चीज़ें बारिश जब हो जाती है बाद शहर जो है स्विमिंग पूल बन जाते हैं, उसका भी फायदा उठाना चाहिए, तो बहरहाल बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे नागरिक के सामने,
पूल्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। बहरहाल इस पे जो है डॉक्टर साहब आगे हमें बात बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किन लोगों को ठंडा पानी और किन लोगों को गर्म पानी।
जी गर्म पानी ऐसा है कि जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है,
ये है क्या डॉक्टर साहब?
जी रूमेटॉइड एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो जॉइंटों पे ज्यादा हमारे है, जोड़ों पे
जी।
तो एक किस्म की इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होती है जो इम्यून सिस्टम में हमारी अपनी जो सेलें हैं उनके यानी अगेंस्ट वो खुद ही अपनी सेलों के खिलाफ ये करते
हैं, दिफाई सिस्टम जो है
खुद ही अपनी दिफाई सिस्टम
जोड़ों पे हमला कर देता है। अच्छा,
तो उनके लिए जरूरी है क्योंकि वो जब होता है तो एक खास किस्म का फ्लूइड होता है हमारे जॉइंटों के जोड़ों के बीच में जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं।
अच्छा,
तो ये बहुत कम होता है, तो जब ये कम होता है देखें मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे एनाटॉमी से जिक्र करता हूँ ऐसे कि हमारे मैं एक मिसाल लेता हूँ हमारी घुटनों की जो ये हड्डी है तो ऊपर जिसको हम फीमर बोलते हैं वो टच करती है टीबिया से नीचे, तो ये ऐसे होती है, तो इनके बीच में एक कार्टिलेज होती है,
सही है,
जब फ्रिक्शन या डीजेडी डिजीज होती है आर्थ्रोस होती है तो ये फ्रिक्शन की वजह से गल जाती है, यानी इसमें कोई वो नहीं रहता, तो दो हड्डियां आपस में टच करती हैं, जब दो हड्डियां आपस में टच करती हैं तो एक खास किस्म की जो एक साउंड जो कोई बैठता है तो यानी एक खास किस्म जोड़ों से वो, तो ये पहली अलामत है हमारी जो जॉइंट डिजीज की। तो अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिस किसी आदमी को तीन जॉइंटों से ज्यादा वो पेन है तो वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस
दर्द हो रहा है यानी
तो पहले तो एक तो घुटनों पे ही होती है, दूसरी जो हमारी जो हाथों में जो ये फेलेंजेस डिस्टल फेलेंजेस जिसको बोलते हैं यहाँ पे वो होती है।
ठीक है,
तो उनको क्या चाहिए कि गर्म पानी में, गर्म पानी अब उनको बैठना है 20 मिनट से ज़्यादा उनको नहीं बैठना है वहाँ गर्म पानी।
ठीक है,
और टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, दर्जा हरारत जो होनी चाहिए 37 से 40 डिग्री तक होनी चाहिए, यानी 90 फ़ारेनहाइट्स तक होनी चाहिए। तो ये इसको कंस्टेंट उसको रखना है। तो अब ये तो हो गया ये, तो अब दूसरा ये है कि अगर डिस्क की सर्जरी है या स्पाज्म ज़्यादा या ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट ऐसा है कि तीन जो मसल्स है आपस में वो वर्लपूल जैसे गिरदाब जिसको हम बोलते हैं तो वहां पे वो जम जाती है, तो एक खास किस्म का दर्द एक जगह पे हम महसूस करते हैं। ये ज्यादातर हमारे जो शोल्डर है वहां पे ज्यादा,
कंधों में ज्यादा
क्योंकि वहां पे तीन चार जो मसल्स है हमारी वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, तो वहां पे हमारे जाने जो जकोजिस जो स्पेशली है वहां से एक खास किस्म का पानी निकलता है वो सुराखों में, तो वो वहां पे उनको चाहिए कि वो सुराख जहां से पानी का प्रेशर ज्यादा है वहां पे वो रखे 20 मिनट तक, और यही टेम्परेचर अच्छा। जो मेंटेन करें 37 से 40 दर्जा रखे, तो वो उसके बाद यानी 20 मिनट के बाद खुद ब खुद ही वो
खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो दूसरा ये है कि अब जो प्रेग्नेंट ये हैं औरतें हैं जो हामले होती हैं, तो अगर वो पानी में 8 महीने तक, हत्ता यहाँ पे भी बोला जाता है कि 9 महीने तक वो अगर पानी में खाली वॉक करें,
ठीक है चलें सही है,
खाली चलें, तो जो बच्चा उनके पेट के अंदर होता है, तो पेट के अंदर जब बच्चा होता है वो पानी में ही होता है,
सही है, पानी होता है, ठीक है,
तो वो बाहर भी पानी हिस करता है, तो वो एक इंटेलिजेंट जो जीन है, इंटेलिजेंस जीन है, वो एक्साइट होता है।
अच्छा, यानी ऑन हो जाता
है, ऑन होता है,
ठीक है,
तो वो एक खास किस्म का जब डिलीवरी होती है तो वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट,
आईक्यू लेवल बढ़ाने में भी जो है
आईक्यू लेवल में भी।
डॉक्टर साहब बात जारी रखेंगे, चलते हैं हसन के पास और देखते हैं हसन हमारे लिए क्या लाए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और खुर्रम, एक सवाल भी आया, अगली साहब ने पूछा है कि कमर में 2 साल पहले चोट लग गई थी, इलाज भी किया था, थेरापी भी मेरे ख्याल में की थी, ठीक नहीं हुए, उसका इलाज क्या है, इन्होंने पूछा है। बहरहाल इसका ध्यान आप रखिएगा, मैं अभी वापस आऊंगा आपकी तरफ और कई चीजें हम नाज़रीन को हम बताना चाह रहे हैं, वो बहुत ही मजेदार सी हैं, तो हमारे साथ रहिए। एक चीज जो बहुत ही ज्यादा अहम है वो ये है कि आजकल जैसे ईरान में आज से स्कूल जो है और यूनिवर्सिटीज खुल गई, इसमें मसला क्या है कि बहरहाल यूनिवर्सिटीज तो खुल गई लेकिन पढ़ाई में ज़हन कैसे आपका लगे, वैसे खूबसूरत तस्वीर थी लेकिन मौजू से ज़्यादा वो मरबूत नहीं थी, मैं अभी मौजू के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ चुन के लाया हूँ और ये भी नहीं है ये अच्छा ये घर है, आप देख रहे हैं बज़ाहिर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर और बज़ाहिर एक कमरा है, छोटा सा, किसी काम का भी नहीं है, पेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही अहम मकसद है और वो ये है कि बच्चे जो हैं उनको एक पुरसकून माहौल चाहिए होता है, खुसूसन बड़ी क्लासों में पढ़ने के लिए, शोर शराबा ना हो, आराम से पढ़ सकें, हर चीज़ करीब हो। इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो जो काम किया गया है उसमें वॉश बेसिन भी वहीं पर है, छोटा सा चूल्हा भी है, वैसे इसमें इलेक्ट्रिकल है, दूसरे चूल्हे भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ ये है कि 10 स्क्वायर मीटर में इन लोगों ने तमाम वो चीज़ें रख दी हैं जो एक अच्छे तालिबे इल्म को ज़रूरत होती हैं पढ़ने के लिए। वाकई वैसे न पढ़ने वाले तो कुछ भी आप कर लें वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले उनके लिए बहुत मुनासिब एक कह सकते हैं माहौल फराहम किया गया है। जो लकड़ी का रंग होता है, एक तो ये मैं आपको बताते चलूं कि वो बहुत ज़्यादा मुअसर होता है कि यानी माहौल का रंग पढ़ने में या ना पढ़ने में, ऐसे ही आपको पुरसकून रखने में या ना रखने में, तो यहाँ पे उसका ख़ास ख्याल रखा गया है। इस कलर की जो लकड़ी होती है, इस रंग की जो लकड़ी होती है वो बहुत पुरसकून कर देती है इंसान को, तो पढ़ने के लिए माहौल फराहम हो जाता है। रंग का जो इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, एक बहुत ही फॉस्फोरिक जो जिसे कहा जाता है ग्रीन कलर है, सब्ज रंग है, वो बहुत मुनासिब होता है पुरसकून रखने के लिए जहन को। इसके अलावा जो चीज़ इसमें है, इस कमरे में है, बहरहाल आज कल टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसमें वाईफाई सिस्टम और कह सकते हैं कि बेहतरीन किस्म के यानी वायरलेस लाइंस और ये सब मौजूद हैं उसमें, ताकि आप इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहें। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो है पूरा कमरा जो है वो इतना बड़ा है
और ये फोल्ड हो जाता है, यानी इसमें आप तह लगा कर आप इसको बहरहाल जब ज़रूरत नहीं, जब पढ़ाई नहीं करनी है तो आप किनारे रख सकते हैं। वैसे पढ़ाई से मतलब मसलन गर्मियों की छुट्टियों में आपने किनारे एक कर दिया, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अहम है कि माहौल पुरसकून हो। अब चलें, ये तो एक ऐसी चीज़ है, कहा जा रहा है कि सन 2014 में मार्केट में आएगी और कीमत भी मुनासिब होगी, लेकिन घर में अगर पुरसकून माहौल फराहम कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर यकीनन अच्छा है आदमी घर में मेहमान बुलाए या मेहमान बने किसी का, लेकिन अगर हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो यकीनन बच्चों के पढ़ाई पर असरअंदाज हो सकते हैं उसके, यानी आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आपको फिर जब रिज़ल्ट आता है सामने तो फिर कुछ लोग इधर भाग रहे होते हैं, कुछ लोग उधर भाग रहे होते हैं, क़यामत का मंजर होता है। बहरहाल चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरा मौजू मैं आपको बताऊँगा। फिर से आ गए हम लोग स्टूडियो में सुबह ज़िंदगी के, और एक चीज़ तो मैं बताना चाह रहा हूँ इस हवाले से है कि बहरहाल खाना पीना बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो कोशिश करें खाने से आप दूर रहें। और इसमें अहम नुक्ता ये है कि उस वक्त आदमी जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, या हत्ता बहुत ज़्यादा खुशी में जब होता है, तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कितना खाया है उसने, उस वो जो है ढंग से चबाता नहीं है वो इंसान खाने को, और नतीजतन ये होता है कि बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाता है, या दूसरे मसाइल सामने आ सकते हैं कि यानी निज़ाम इन्हज़ाम जो है वो आपका काफ़ी हद तक मुतासर हो सकता है और नुकसानदेह आपके लिए ये चीज़ साबित हो सकती है। कहा जाता है कि गुस्से में खाना खाने से ये होता है कि आप जो है मकदार खाने की आपको पता ना चले आपने कितना खाया है, और इसमें ये बाज़ लोगों का ये रहता है कि वो न सिर्फ ये कि बहरा गुस्से में रहते हैं बल्कि गलत चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग स्ट्रेस में जब मुब्तला होते हैं तो च्युइंगम खाना वो यानी पसंद करते हैं, लेकिन उनको कोशिश करनी चाहिए इसके बजाय अगर वो मसलन गाजर जैसी चीज़ इस्तेमाल करें जो थोड़ी सख्त हो और उसके यानी उसको ज़्यादा चबाना पड़े निकलने के लिए, वो ऐसी वो इस्तेमाल करें ताकि इजाफी कैलोरीज भी बदन में ना जाएं और बदन भी आपका मुकम्मल कह सकते हैं कि सेहत में रहे और स्ट्रेस भी आपका काफ़ी हद तक दूर हो जाए, क्योंकि आपका जहन उसमें लग जाएगा उसको चबाने और दबाने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुआसर बहरहाल टिप्स थी थोड़ी बहुत जो आपकी खिदमत में पेश की। वैसे और कई चीज़ें हैं लेकिन वक्त नहीं है, चलते हैं खुर्रम के पास, अपने सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। खुर्रम,
बहुत शुक्रिया हसन, बहुत मुफीद आपने बातें की, खासतौर पर जो कमरा आपने दिखाया वाकई एक बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। अलबत्ते इसके साथ ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो बड़ा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पसंद करते हैं कि जहाँ शोर शराबा है वहाँ बैठ के पढ़े। देखा होगा आपने कारपेट पर लेट गए या मसलन सोफे पर टेक लगा लिए, लेकिन कुछ बहुत हसास होते हैं इस मामले में कि उनको बहुत बिल्कुल जैसे आपने इन्वायरमेंट दिखाया कि वॉशरूम भी साथ ही हो, पानी पीने का, इंटरनेट भी हो, सारी चीज़ें एक टेबल पर पड़ी हों तब वो पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं होता है ऐसा बिल्कुल।
उसमें बेहतर ये है कि पुरसकून माहौल
बिल्कुल
फोकस कर सकते हैं, कम है यानी उनकी वाकई तादाद कम है जो शोर शराब
शोर शराब में
शायद जो बड़े घराने होते हैं
बिल्कुल
भाई बहन
उनको आदत होती है, बिल्कुल सही कहा,
लेकिन
बाकी जो है बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बारह चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब और क्या हमारे पास पानी के सिलसिले में?
जी पहले तो सवाल,
हाँ, सवाल
जी जी बिल्कुल जरूर।
तो ये सर्जरी हुई थी ना,
इन्होंने कहा इलाज हुआ था
दो साल पहले। देखिए इसमें पहले सबसे बड़ी ये बात है कि पहले इसको देखना है एक किसी डॉक्टर ऑर्थोपेड या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना और देखना, टेस्ट करना कि इसकी जो स्पाज्म में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है या खुद वो पेन रेडिएट तो नहीं होती है पाँव में या आगे से या पीछे से, ये पहले देखना। अगर सबसे बेस्ट यही है कि पानी में अगर वो जाएँ, यही जकोजी यूज़ करें, सबसे बेस्ट और ये कंजर्वेटिव और सबसे सस्ता इलाज यही है उनके लिए।
ठीक,
यही मैं पहले इसको इनको तवज़ी करता हूँ।
डॉक्टर साहब मसलन अब ये जो है जैसे अब इन्होंने कहा चोट लगी है, बहरहाल इन्होंने बहुत महदूद किस्म की जो है इन्फॉर्मेशन दी है, ये बताना कि रीढ़ की हड्डी पे लगी है, पट्ठों पे लगी है, वो जैसे आपने कहा कि दर्द जो है वो फैल रही है, क्योंकि बहुत अहम चीजें, तो इसके लिए मुझे लगता है कि इनको वाकई जरूरत है कि अगर तो वो पानी की उसमें ठीक हो जाते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर
किसी डॉक्टर पर।
जी ठीक,
तो हमारी इसमें जो हाइड्रोथेरेपी में जो दूसरा मसला है कि हार्मोनों का कैसे है,
देखिए हार्मोनों का भी पानी से ताल्लुक है
बहुत,
मतलब इस पर बात करते हैं हसन के पास जो है मेरे ख्याल से हमारे पास एक और सवाल।
बिल्कुल एक सवाल है, हमारा माइक्रोफोन
فون اگر آن ہو تو میں پوچھوں کہ اس میں فیصل صاحب نے پوچھا ہے پانی کون سا، دھوپ سے گرم شدہ یا آگ سے گرم شدہ؟
دیکھیں یہ تو سوال ہے،
یہ ضروری نہیں ہے کس سے گرم ہو، لیکن پانی جب ہم نے بولا ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 سے 40 ڈگری تک ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے ٹھیک،
یہ ضروری نہیں ہے کس، یہ ضروری نہیں ہے کہ دھوپ سے اوپن یہ سوئمنگ پول ہے یا نیچے سے سٹوو جیسے ہم گرم جیسے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہیٹ جو ہے گرمی 37 سے 40 ڈگری تک ہونی چاہیے، اور زیادہ 20 منٹ سے زیادہ ان کو نہیں چاہیے وہاں پہ رہنا، کیونکہ اگر 20 منٹ سے زیادہ، کیونکہ جو میٹابولزم سیلوں کا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو اور کچھ پرابلم ہو سکتی ہے،
ہمارا سسٹم جو چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے ہارمونوں پہ آتے ہیں ورنہ مجھے لگتا ہے آپ کے جو
بالکل ختم ہو گیا
ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہارمونوں کے سلسلے میں بات کریں گے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے بہت مفید باتیں ہمیں بتائیں، خاص طور پہ جن لوگوں کو گھٹنوں کا پین درد ہے ان کے لیے میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ بہت اچھی ورزش ہے، کیونکہ وزن آپ کا کم ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے اس میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حسن کے پاس اور ڈاکٹر صاحب سے اجازت لیتے ہیں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ جی حسن،
ایک چیز میرے ذہن میں آئی، میں بعد میں بتاؤں گا۔
جی جی بعد میں بتائیے۔
چلتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے لیکن ہم لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی اور خرم بھائی کے ساتھ۔
خواجہ امیری صاحب کی آواز تھی ہمارے ناظرین نے سنی
جا رہا ہوں ادھر،
اور جو ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہرحال حسن جو ہے میرے پاس آ گئے ہیں یہاں پر۔ جی حسن کیا حال ہے آپ کے؟
بس الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ سو کے اٹھے آپ؟
جی بالکل، بڑا فریش ہوں میں، چائے کی بس ایک ضرورت ہے، چائے بھی پی لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔
بالکل انشاءاللہ ہم لوگ پی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو میں کمنٹس میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔
جی جی،
بہت ہی بہرحال مزیدار سے کمنٹس بھی ہیں جو ہم لوگ کے لیے بھیجے ہیں فیصل مرتضوی صاحب نے، اور ٹیلی فون سے بھی ہم لوگ کا رابطہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے میں جلدی سے اگر میں پڑھ دوں تو نہیں چھوڑیں بعد میں، کیوں کافی لمبا ہے اس میں۔ بہرحال آپ لوگ خود جا کے ہم لوگ فیس بک کے پیج پر کمنٹس پہ جا کے دیکھ لیجیے گا، بہت ہی لیکن اہم ہے مقصد کے حوالے سے، زندگی میں مقصد رکھنا اور کس لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، تو اس میں فیصل صاحب نے بھیجا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اور
عبد الرحیم صاحب ہمارے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں، میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔
میں بھی،
ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا۔ عبد الرحیم صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو
ناظرین میں سے
نہیں، یہ ہمارے جو ہیں ماہر ہیں اور ماہر ہے، ہم نے لائن پہ لیا ہے۔ بہرحال ہمارا جو ہے ہفتے کا موضوع جو ہے آپ کو پتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آپ لوگوں کا موضوع ہے یہ تو کافی اچھا موضوع بھی ہے اور کافی جو ہے وسیع موضوع بھی ہے۔
بہت شکریہ
جی۔ تو
اس میں دیکھیے ہم لوگوں کا موضوع جو ہے زندگی میں مقصد رکھنا ہے، مقصد رکھنا ایک بہت ہی، یعنی اگر آپ اس پہلو سے اس کو دیکھیں کہ آپ صبح کو جب اٹھتے ہیں، شروع پروگرام میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مقصد رکھنا، اگر مقصد زندگی میں نہ ہو شام تک واقعی آپ جو کچھ کریں گے وہ بیکار ہوگا۔ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
جی جی جی، اصل میں مقصدیت جو ہے زندگی میں وہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔
صحیح،
یعنی بغیر مقصد کے زندگی گزارنا جو ہے وہ آپ گزار ہی نہیں سکتے، بلکہ انسان پوری زندگی سرگردان رہتا ہے۔
صحیح،
تو مقصد کو جو ہے اگر ہم پوری کائنات میں دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، یعنی کیا آپ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عبس اور بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟
صحیح،
اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت ہے، فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے انسان کو اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ عبادت کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اور بندگی جو ہے اس میں بھی بہت وسیع معنی ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بڑے پیمانے پہ اگر ہم دیکھیں تو پوری کائنات کی اور پوری جو انسانیت ہے اس کا بھی ایک بڑا ہدف ہے۔ جیسے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بھی بندگی شرمندگی، یعنی جب تک انسان کی زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو، مقصد نہ ہو، تو وہ زندگی شرمندگی کہلاتی ہے۔ جی، تو جو ہدف ہوتا ہے زندگی کا، مقصد ہوتا ہے، وہ زندگی کو ایک جہت دیتی ہے، یعنی زندگی کو ایک خاص راستے پہ ڈالتی ہے۔ اور پھر ہدف جو ہوتے ہیں یا مقصد جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے لیے یعنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں, اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے یہ اصل میں ہمیں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی انہوں نے قرار دی ہے. مثلا جب ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے نا, تو پہاڑ کے اوپر اس کے لیے ایک نشان ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہنچنا ہے. اب جو ہے اب جب راستے میں وہ چلتے ہیں وہ شاید مختلف مراحل سے گزرے اور مختلف جو ہے اسٹیشنوں سے گزرے, لیکن اس کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو اس پہاڑ کی چوٹی کو میں تشبیہ دوں گا وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسان کے تکامل سے, کہ انسان کے جو زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے اس کو اصل میں اس مقصد کو مقصد کے لیے پہنچنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں تو یہ جو اہداف ہوتے ہیں زندگی میں اس کی بھی پھر تقسیم بندی ہوتی ہے. زندگی میں جو ہے بڑے اہداف بھی ہوتے ہیں چھوٹے اہداف بھی ہوتے ہیں. تو بڑے اہداف تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف رکھنے چاہیے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے مثلا, اب اس کی زندگی کا جو بڑا مقصد ہے مثلا اس کو ڈاکٹر بننا ہے.
جی.
لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو ہر صبح اٹھنا ہوتا ہے, اسکول جانا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو یونیورسٹی جانا ہوتا ہے. صحیح. اور ہر سال جو ہے وہ امتحان پاس کرتا ہے, ہر سال جو ہے وہ اس سٹیج میں جو ہے ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ اپنا جو اس کا بڑا مقصد ہوتا ہے اس کی طرف پہنچ جائے.
صحیح.
لیکن اگر اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو وہ جو ہے اس مقصد تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا, بلکہ وہ پوری راستے میں جو ہے سرگردان رہتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دوں, اگر صبح آپ جو ہے اپنے دفتر کے لیے نکلتے ہیں تو مقصد جو ہے آپ کا دفتر ہوتا ہے.
جی.
تو اسی کے لیے پھر آپ چھوٹے چھوٹے راستے اور صحیح راستے ڈھونڈتے ہیں کہ صبح مثلا آپ کو دفتر پہنچنا ہے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے, اور کس راستے سے آپ جائیں گے تو آپ صحیح ٹائم پہ پہنچیں گے.
صحیح.
تو آپ جو ہے صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہو ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے, مثلا جی. شام کو آپ نے کھانا کھا لیا اور آپ جو ہے گھومنے چلے گئے.
صحیح.
تو آپ کسی بھی راستے سے جا سکتے ہیں.
جی.
گم بھی ہو سکتے ہیں.
صحیح.
تو
بہت بہت شکریہ عبد الرحیم صاحب, بہت بہت شکریہ. بہرحال وقت ہم لوگوں کے پروگرام کا ختم ہو گیا. بہت ہی زبردست آپ نے نکات ہمارے ناظرین کو بتائے اور ہم لوگوں نے بھی انہیں واقعی استفادہ کیا اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی آپ کی باتیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ آپ کا بھی.
جی حسن, بڑی پیاری باتیں کی انہوں نے, اور یہاں تک کہ یہ بڑی اچھی ان کی بات مجھے لگی کہ اگر آپ نے دفتر بھی جانا ہے تب بھی آپ پلاننگ کریں, مقصد رکھیں کس طرح جانا ہے کس طرح نہیں جانا.
پہلے اس کے لیے بھی مقصد رکھنا چاہیے اور گاڑی میں آ کے سونا نہیں چاہیے.
جی بالکل.
تو
ہمارے جو مہمان ہیں کل کے ڈاکٹر اویس ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, ڈاکٹر اویس رضا, اور جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ جو ماہر ہیں صفائی ستھرائی کے ڈاکٹر ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائیجین میں اسپیشلائزیشن بہرحال کر رہے ہیں. وہ بات کریں گے اسکولوں میں کیسے صفائی ستھرائی کا, کیسے بیماریوں کو روکا جائے, کیسے بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جائے.
ایک بہت ہی اہم مرکز ہوتا ہے بیماریوں کے پھیلنے کا
اسکول کالج کے زمانے میں.
ایک کو زکام ہوا دس کو ہو گیا. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا, زکام مت لیجیے گا, اسکول اچھی طرح سے جائیے گا, یہ سارے نکات ہیں, مقصد رکھیے گا زندگی میں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.